वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। उमज्ञात मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले दो श्लोकों में ब्रह्मा जी का प्रार्थनाओं में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान का ये जो सुंदर बाल गोपाल वपु है उनका प्रणाम किए। पहला श्लोक में प्रणाम करते हुए उन्होंने खास करके वो रूप का रूप माधुरी का वर्णन किया कि किस प्रकार भगवान का जो ये शरीर है वो किस प्रकार है। उनका शरीर घने बादल के रंग है। उनका अभ्र वपुषे वपुषे उनका वपु अभ्र मतलब घने बादल के जैसा रंग है उनका। और दूसरा है तरिडम्बराया वो वपु का जो वस्त्र है वो किस प्रकार है वो बिजली के जैसे मान है। तो बादल में जब बिजली चमकता है यानी दूसरे शब्दों में अगर कोई व्यक्ति बादल को देखे बिजली चमकता हुआ बादल को देखे तो कृष्ण का स्मरण कर सकता है। कृष्ण का शरीर का तुलना बादल के समान और उनका जो पीतांबर वस्त्र है वो बिजली के समान किया गया है। और उसके बाद गुंजावतम सर गुंजा पुष्पों के द्वारा अपने कानों में अपने सर के ऊपर सजाए हुए है। परिपृच्छ लसन मुखाय और उनका मुख जो है परिपृच्छ ये मोर पंख के द्वारा सुसज्जित है और चमक रहा है उनका मुखमंडल। और वन्य सजे यानी वनमालाओं के द्वारा विभूषित है। और कवलवेत्र विशान वेणु उनके हाथ में दही रैसे कवला और वेणु को अपने जो हाथ के नीचे धारण किए हुए है। और लक्ष्माश्रिय मृदुपदे पशुपांग जाया लक्ष्माश्रिय मृदु पदे इस प्रकार उनका सुंदरता है। मृदु पदे उनका चरण जो है बहुत कोमल है और साथ साथ में वो कौन है, कोई और नहीं है, नंद महाराज के पुत्र जो पशुपा है, नंद महाराज अंगजाया उनके पुत्र है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी खास करके इस पहली श्लोक में रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कृष्ण को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, हे कृष्ण, मैं आपका यही स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो सारे अवतारों का स्रोत है। मैं ये बाल गोपाल स्वरूप को ही दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी सारी प्रार्थनाएं इस स्वरूप की ओर इंगित किया हुआ है। इसके बाद दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी करते हैं, अस्यापि देव पुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामाय न तु भूतमयस्य कोऽपि। मैं ब्रह्मा हूँ का मतलब ब्रह्मा जी, अपि ब्रह्मा का स्तर प्राप्त करने के बाद भी ना शक्नोमि नेशे, मैं जान नहीं सक रहा हूँ, मैं जान नहीं सकता हूँ। क्या नहीं जान सकता हूँ? महिमा, मही को महिमा, महिमा को मही इधर संबोधित किया गया है, कहा गया है। तो आपकी महिमा को नहीं जान सकता हूँ। तो क्यों नहीं जान सकता हूँ? क्योंकि आपका जो शरीर है न तो भूतमयस्य, आपका शरीर भौतिक चीज़ों से नहीं बना है, भौतिक चीज़ों को नहीं बना है। लेकिन मेरा शरीर कैसे बना है? ये भौतिक चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे ऊपर विशेष कृपा किया, केवल आपका कृपा मात्र से मदनुग्रहस्य मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया, इसलिए मुझे ये शरीर का दर्शन हो रहा है, ये रूप का दर्शन हो रहा है। बाद में रूप स्वेच्छामयस्य, आपका ये रूप जो है स्वेच्छामयस्य है, आपका स्व इच्छा के अनुसार आप ये रूप को प्रकाशित करते हो। मेरी योग्यता के वजह से आपका ये रूप दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे आपकी विशेष कृपा है, आपके अनुग्रह से ही मुझे प्राप्त हुआ, मेरा कोई योग्यता नहीं है। और अंततः ये श्लोक को ब्रह्मा जी इसलिए उच्चारण करते हैं कि भगवान कह सकते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप तो बड़े विद्वान हो, आप एक महान व्यक्ति हो, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, इतना होने के बावजूद मुझे क्यों स्तुति कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने अपना जो अज्ञान को व्यक्त किया, पांच प्रकार का अज्ञान को व्यक्त किया। पहला बात तो यह है कि मैं भौतिक शरीर से युक्त हूँ, तो ये आपका आध्यात्मिक शरीर को मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं जान नहीं सकता हूँ। दूसरा, भले ही ये बाल वपु आप मेरे सामने प्रकट है, लेकिन फिर भी इनको ही मैं समझ नहीं सकता हूँ, ये शरीर को ही समझ सकता हूँ कि भगवान का जो ये श्याम सुंदर स्वरूप है उनको मैं कैसे समझ सकता हूँ। तीसरी बात है कि जब आपका रूप का ही मुझे ज्ञान नहीं है, तो आप जिस पर क्या आनंद को अनुभव करते हो वो आनंद को मैं कैसे समझ सकता हूँ। तीसरी बात यह है कि आपकी सेवा में अनेकों भक्त लोग आपकी लीला में मग्न हैं, वो लोग इतना आनंद को अनुभव कर रहे, तो ये आनंद को जब अनुभव कर रहे थे मैं जान नहीं पाया कि ये आनंद किस प्रकार का है। जब वही नहीं जान सकता, आपकी भक्तों का, आपकी जो ग्वाल बालों का जो लीला है वही नहीं समझ सकता हूँ, तो आपका जो आनंद की अनुभूति को मैं कैसे जान सकता हूँ। और अंततः मेरा एक गुण है निश्चित रूप में, क्या है वो? मनसांतरेणा, मेरा मन जो है पूरा भौतिक चीज़ों के निवृत्त हो चुका है, फिर भी मैं इन चीज़ों को नहीं जान सकता हूँ, तो भौतिकवादियों का क्या कहना? भौतिकवादी लोग आपको कैसे जान सकते हैं? इस प्रकार साक्षात तैव किमुतात्म सुखानुभूते, तो सुखानुभूते आप जो सुख को अनुभव कर रहे हैं मैं कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। पाँच प्रकार का ज्ञान को ब्रह्मा जी व्यक्त करते हैं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, केवल आपका कृपा से ही ये रूप का दर्शन हुआ है करके ये दूसरा श्लोक संबोधित करते हैं। अभी तीसरा श्लोक से सातवां श्लोक तक चर्चा करेंगे। ये चार श्लोकों में भक्ति का महिमा का वर्णन हुआ है। तो अगर भगवान का रूप का दर्शन अपनी प्रयास के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं हो पाता है करके ब्रह्मा जी पहले श्लोक पे कह चुके हैं, तो ऐसा क्या रास्ता है जिसके द्वारा भगवान का रूप को हम जान सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि यस्मिन् विज्ञाते सर्वेवं विज्ञातं भवति एवं विदित्वात् मृत्युमेतम् विदित्वेति मृत्युमेति। भगवान को जानने से या उनका ज्ञान प्राप्त होने से ही हमको मुक्ति प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में है। तो इस बात को लेके ब्रह्मा जी आगे के श्लोक कहते हैं कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा आपका ये जो रूप को हम पहचान सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं पहचान सकते हैं, तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा पहचान सकते हैं। ये बात का जवाब देते हुए तीसरा श्लोक को वर्णन करते हैं जो शुद्ध भक्ति को निरूपण करने वाला श्लोक है। जैसे कि कल परसों में हम चर्चा कर रहे थे श्लोक के बारे में शाम के क्लास में, जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उसका निरूपण करते हुए शास्त्रों से उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, शास्त्रों का श्लोक कोट कीजिए, तब रामानंद राय वर्णाश्रम धर्म कर्मार्पण और सर्वधर्म त्याग और उसके बाद ज्ञान मिश्र भक्ति इन सबको बताते हुए श्लोकों को कोट किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये हो बाह्य 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 करते करते जब रामानंद राय ने ये श्लोक कोट किया तब उन्होंने कहा यह हो ये ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु ने जिसको शुद्ध भक्ति के रूप में स्वीकार किया वो श्लोक ये है। तो इसका महत्व आप जान सकते हैं, ये श्लोक कहाँ आता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में आता है, इसलिए इस श्लोक को थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिए, हो सकता है तो याद भी कर लीजिएगा। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना में तीन श्लोक है जो याद करना ही चाहिए भक्तों को, क्योंकि बार बार कोट किया जाता है। तो तीन श्लोक बताऊंगा, इसमें से तीनों में से पहला श्लोक ये है, तीसरा श्लोक है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्यन मन्त्येव ज्ञाने प्रयासम उदपास्यन मन्त्येव जीवन्ति सम्मुखरितं भवदीयवार्ताम् जीवन्ति सम्मुखरितं भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग् मनोभेर् स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवाग् मनोभेर् ये प्रायशो जितः जितोऽपि सितैस्त्रैलोक्यम् ये प्रायशो जितः जितोऽप्यसितैस्त्रैलोक्यम् ज्ञाने प्रयासं उदपास्य नमन्त्येव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग् ये प्रायशो जितोऽपितैस्त्रैलोक्यम् ज्ञाने प्रयासं उदपास्य नमन्त्येव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् श्रुतिगतां तनुवाग् मनोभिर् ये प्रायशो जितोऽप्यजितो ज्ञाने प्रयासम् उदपास्य नमन्त्येव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग् मनोभिर् प्रायशो जितोऽपि जितो ये श्लोक में कहा गया है ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, सारा प्रयास, किस प्रकार का प्रयास, ज्ञान मार्ग का जो प्रयास है उसको त्याग करना, उदपास से मतलब त्याग करना, जरा सा रंच मात्र भी ज्ञान का प्रयास को रखे बिना नमन्त्येव प्रणाम करना। नमन्त्येव मतलब प्रणाम करना, किनको प्रणाम करना, सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, सन्मुखरितम मतलब सत भक्तों के मुखारविंद से उत्पन्न हुआ जो वार्ता है, भगवान की कथा है, जो भवदीय, भवदीय मतलब जो भवसागर को पार करने वाला है, ऐसी जो वार्ता है, ऐसी जो कथा है, उनको क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कहाँ श्रवण करना चाहिए, स्थाने स्थितः, स्थाने स्थितः मतलब जहाँ आप बैठे हो उधर बैठना, जो स्थान में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो स्थान है उस स्थान में स्थित रहना। श्रुतिगताम तनुवांग मनोवीर, श्रुतिगताम और श्रुतिगताम मतलब उसको श्रवण करना, या जो सन्मुखरितम, संत लोग जो है जो भी वाणी कहते हैं वो श्रुति वेदों से उत्पन्न होता है, इसलिए श्रुतिगताम। तनुवांग मनोभिर, कैसे नमंती, कैसे प्रणाम करना चाहिए, तनुवांग मनोभिर, तनु मतलब शरीर से, वांग मतलब वाणी से, मन, मनोभिर मतलब मन से। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार करता है, इस प्रकार जीता है, तो क्या होगा, प्राय सा, प्राय, प्राय ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, अजितः, भगवान को अजित कहा गया है, अजितोपि जितः, भगवान अजित होने पर भी उस भक्त के द्वारा वो जीत जाता है, यानी भगवान वो भक्त के सामने हार जाता है। 23 त्रैलोक, तीनों लोकों में जिनको व्यक्ति जीत नहीं सकता उस व्यक्ति को जीत लेता है वो भक्त, जो इस प्रकार अपना जीवन व्यापन करता है, कैसे, तनुवांग मनोभिर, तनु शरीर से, वाण वाणी से, मन से, जो अपना जीवंती प्रणाम करते हुए भगवान की श्रुति का ताम प्रणवा, तनुवांग मनोभिर। तो इधर सबसे पहला ये तनुवांग मनोभी, ये जो चीज़ है इसका अनेकों प्रकार व्याख्या किया गया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद अंततः तो ये नमन्त्येव सन्मुखरितम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला श्रीपाद सनातन गोस्वामी पद तनुवांग मनोभी, ये श्लोक में जो शब्द आया तनुवांग मनोभी, इनको तीन प्रकार व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन इट इन थ्री वेज। सबसे पहला, भक्त लोग किस प्रकार भगवान की ये जो वाणी है श्रुतिगताम, उनको कर्मणा मनसा वाचा तीन प्रकार से कैसे उसको स्वीकार करते, उसका वर्णन करते हैं। सबसे पहला तनु, उनके शरीर के द्वारा क्या करेंगे भक्त लोग, ये जो भगवान के जो दे कैन टच द लोटस फीट विद देयर हैंड्स, कॉल हिम होम देयर वर्ड्स एंड अटेन डायरेक्ट ऑडियंस विद द माइंड। तो हमके शरीर के द्वारा इन वाणी का सेवा कैसे किया जाए, तनु इसके भवदीय वार्थाम उसका कैसे सेवा किया जाए। ये भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रसंग हुआ, भागवत का प्रसंग कहीं हुआ, वो शरीर का कार्य है उसके अंदर क्या है, आयोजन करना, पंडाल बनाना, या माइक सेट करना, तो अनेकों लोगों को जाके बुलाना, या चल के भागवत प्रसंग में जाना, तो इसके द्वारा शरीर के द्वारा आदर देते हैं, किनको आदर देते हैं, श्रुतिगतवाम, जो श्रुतियों को यानी वैदिक मंत्रों को या भगवान की कथा को वो इस प्रकार आदर देते हैं। श्रुति तनु वांग वाणी के द्वारा, तो वाणी के द्वारा क्या करेंगे, भगवत कथा का गुणगान करेंगे और जो उन्होंने श्रवण किया इसको वापस दूसरों को बताएंगे, इसके द्वारा वाणी के द्वारा सेवा होता है, वाणी के द्वारा नमंती। तनु वांग मनोभेद, मन ही मन ने भगवान की लीलाओं को जो श्रवण किया है उसको स्मरण करना, इसके द्वारा मन के द्वारा सेवा होता है। तो इसलिए तनु वांग मनोभिर, इस प्रकार भक्त लोग जीवंती, उनका पूरा जीवन शरीर कर्मणा मनसा व्याचा वाचा केवल भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन में ये तीनों चीज़ों को अपनी सेवा में लगाते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, भगवत कथा की सेवा में लगाते हैं। ये पहला व्याख्या है तनुवान मनोभी का। और दूसरा है तनुवांग मनोभी अजितहा। ये इसके साथ कनेक्शन में देखेंगे कि किस प्रकार लोग, भौतिकवादी लोग, अपना कर्मणा मनसा वाचा इतना भी प्रयास करें अपने शरीर से, अपने वाणी से या मन से, इतना प्रयास करने के बाद भी भगवान को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास करे, भगवान क्योंकि वो अजित है, तीनों लोकों में अजित है, उनको कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता। अपना शरीर से, मन से, वाणी से प्रयास करता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान अजित होने के नाते वो कर्मणा मनसा वाचा के द्वारा कोई व्यक्ति उनको जीत नहीं सकता। तो इस प्रकार कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, अपना शारीरिक तपस्या के बल पे तपस्या करते करते वो सोचते हैं कि भगवान को प्राप्त कर लूँगा, उनको जान लूँगा, लेकिन वो संभव नहीं है। दूसरी बात, अपनी वाणी से वो सोचते हैं कि मैं अपनी बहुत सारा व्याख्या करते करते भगवान को प्राप्त कर लूँगा, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि उपनिषद में कहा गया है कि नायम आत्मप्रवचन लभ्यो नमी दशा न भुवनाश्रुतेन वैश्यवृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मवृणुते तनु स्वाम। उपनिषदों में कहा गया है कि नायम आत्म प्रवचन लभ्यो, बहुत लंबा लंबा प्रवचन देने के द्वारा भी भगवान प्राप्त नहीं होते, न मे दशा अपनी बुद्धि के द्वारा भी भगवान प्राप्त नहीं होते, न भुवनाश्रुतेन सारे श्रुति मंत्रों को याद कर लिया फिर भी भगवान प्राप्त नहीं होते। उसी व्यक्ति को भगवान प्राप्त होते हैं जो भगवान चुनते हैं, जिसको भगवान ने चुना उनको सामने भगवान अपना स्वरूप को प्रकाशित कर देंगे। तो ये तनुवांग मनोबीर का ये दूसरा व्याख्या श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, डिस्पाइट ऑल देयर एंडिवर्स द अल्टीमेट ट्रूथ रिमेन्स बियॉन्ड द रीच। परम सत्य उनके समझ के परे हो जाएंगे, उनके बुद्धि के, उनके शरीर के, उनके वाणी के परे हो जाएंगे। और तीसरा ये है कि किस प्रकार भक्त लोग तनु वांग मनोभी ये तीनों तरीके से भगवान को जीत लेते हैं। यानी जब भगवान को, जब भक्त लोग जीत लेते हैं, भगवान क्या करते हैं, अपना कर्मणा अपना शरीर से, मनसा अपने मन से, वाचा वाणी से, वो भक्तों का सेवा करते हैं। किस प्रकार कि तनु वांग मनोभेर, कृष्ण अपना शरीर के द्वारा हमेशा भक्तों की पक्ष में रहते हैं। चाहे भक्त लोग कभी कभी कुछ ना कुछ टूटियां कर भी दे, भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। कभी कभी भक्त कोई कार्य करने जाता है, उसको सहयोग देने के लिए भगवान के साथ में ही चलते हैं। यानी भगवान का सुंदर वपू है, शरीर है, प्राय भक्तों के साथ में ही रहता है। क्योंकि भगवान बहुत लालायित है, किसके लिए, उनका गुणगान को श्रवण करना, करने की वो लालसा भगवान में रहता है। जैसे हमारे अंदर भी ऐसा रहता है, कोई व्यक्ति हमारा स्तुति करता है उनके साथ में रहना चाहते हैं, है कि नहीं, हमारा स्तुति को हम सुनना चाहते हैं। ये स्वभाव हमारे अंदर क्यों है, क्योंकि भगवान में है, कृष्ण में है, नहीं तो ये कहाँ से आया है, ये कहीं और से आया नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति स्तुति करता है तो सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। भक्त लोग कृष्ण का गुणगान हमेशा करते रहते हैं, इसलिए कृष्ण जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्या 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 बोल रहे हैं मैं सुनूं। तो ये भाव है इधर कि उनका शरीर, भगवान का शरीर भक्तों के साथ में हमेशा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो कृष्ण का गुणगान हमेशा करते रहते तो क्या हुआ, उनके साथ में रह जाते, तो उसको छोड़ के नहीं जाएंगे भक्त, और भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये एक फायदा है। तो ये क्यों भगवान भक्तों के साथ में रहते हैं, ये जानना चाहिए भक्तों को। अगर ये व्यक्ति जानता है तो कब ऑलवेज कृष्ण का गुणगान करता ही रहता है, क्योंकि मालूम है ये कृष्ण का एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है, वो अपना ही गुणगान सुनने का उनका बहुत इच्छा है, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ही इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग। इतना हद तक कि कोई व्यक्ति मान लीजिए भगवान के सामने बहुत सुंदर भोग लगाया, बहुत सारे व्यंजन बना के पका के उनको लगाया, भगवान को खाओ, और पीछे कहीं भक्त उनका गुणगान कर रहे, समझ लीजिए उनका मन इधर नहीं रहता, खाने में नहीं रहता, वो गुणगान सुनने में रहता है। तो ऐसे ही होता है कि आपका हमारा भी स्वभाव ऐसा है। कोई व्यक्ति को मान आप खा रहे हो, कोई आपको आकर स्तुति कर रहा है, आपका सुंदर आपने ऐसा अच्छा किया ये किया बोला, आप खाना भी बंद कर देंगे, लेकिन वो सुनने लग जाएंगे, ये स्वभाव है। तो ये प्रत्यक्ष हुआ है जगन्नाथपुरी में। ये स्टोरी आपको पहले सुनाया था 2 साल पहले कि एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा गंगे चोलन जो जगन्नाथ प्रैक्टिकली वो राजा से ज़्यादा वो मंदिर का प्रेसिडेंट ज़्यादा थे, वो राजा तो राजकार्य तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। तो रोज़ आके चेक करते थे भगवान का सेवा, जगन्नाथ जी का सेवा बराबर हो रहा है कि नहीं। तो पंडित लोग का पूरा फर्स्ट क्लास सेवा चल रहा था, एकदम स्ट्रिक्ट हो गया, इतना इतना छप्पन भोग लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक दिन राजा के देखे कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा तीनों के शरीर में खरोच आए और उनके जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए थे। हाँ, कहीं ऐसे लग रहा था कि कहीं कांटों से छुपा हुआ है, कांटे के द्वारा वो फटा हुआ है। तो सारे पंडितों को बुलाया, राजा ने कहा कि क्या हो रहा है, देखो जगन्नाथ जी का सेवा ऐसे बराबर कर नहीं रहे हो आप, कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे रहस्य क्या, आप ढूंढो। तो पंडित लोग ने कहा ठीक ढूंढेंगे। राजा ने कहा जब तक इसके पीछे क्यों कारण क्या नहीं ढूंढोगे तब तक आप कोई खाएगा नहीं, फास्टिंग करेंगे। पंडित लोग का फास्टिंग मतलब बड़ा हो नहीं सकता, एकादशी भी नहीं करते तो क्या है। तो अभी क्या करें, वो लोग मतलब पंजिका खोल के बहुत बहुत प्रयास किए कि हम कैसे ढूंढे, पता नहीं लग रहा था। पूरा दिन भर भूखे है और रात को भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान क्या है ये, हमको इतना भूखा रखते हो, आपका सेवक है। तो भगवान राजा के सपने में आए, उन्होंने कहा कि पंडित लोगों को क्यों भूखा रखते हो, मैं तो वैसे गया था पीछे बगीचे में गया था, तो ये खरोच लगे। राजा ने पूछा बगीचे में क्यों गए, क्या ज़रूरत है। जगन्नाथ ने कहा कि सेवा तो इधर बढ़िया हो रहा है, सब कुछ भोग वोग लग रहा है, लेकिन क्या है कि बगीचे में एक बालिका गीत गोविंदम गा रही थी, इतना मधुर स्वर में, इतना सुंदर गा रही थी, मेरा गुणगान मेरी लीलाओं को वर्णन कर रही थी, तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं ऑल्टर छोड़ के पीछे गया बगीचे में। तो बगीचे में जाके सुन सकता है ये खरोच क्यों आए हैं। अब मान लो कि हम तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों जाके वो लड़की के सामने खड़े होकर सुनने लगे, क्या लड़की गाएगी, क्या नहीं गा पाएगी, इसलिए हम चुप चुप के सुन रहे थे बगीचे में, इधर उधर जाके कहीं कांटे लगे तो इसमें क्या है, करो थोड़ा खरोच आगे तो। लेकिन हमको तो सुनने में बहुत आनंद है। तो राजा ने कहा गीतों को इंदम तो होता है, मंदिर में भी गाया जाता है, आपके सामने उधर जाने की क्या ज़रूरत है आपको। तो भगवान ने कहा कि गीतों को इंदम के अलावा भी और कुछ भजन भी गाए जाते हैं, ये हमको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं चला गया। तो अब देखिए कि भगवान का ये स्वभाव है, जहाँ गायंत यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामी। तो इस बात को सूचित किया जा रहा है कि भगवान अपनी सुंदर वपु के साथ, भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय या कूर्म ब्राह्मण के संवाद में इस बात को हमने सुना कि जैसे कोई भक्त निरंतर हरिनाम जप करता है, भगवान का गुणगान करता है, कृष्ण उनके साथ में है, भले उसके अंदर कितना भी दोष क्यों ना हो, खाली उनके अंदर खाली गुणगान करना चाहिए, कृष्ण उनके साथ में, कृष्ण हमेशा उस भक्त का पक्ष लेते हैं जो उनका प्रचार करते हैं। तो कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ, भले मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी में अगर कोई गलती करता है तुरंत निकाल देंगे, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर भले ही वो उधर नौकरी करने वाले लोग जो है गलती कितना भी करे, कितना भी वो दुर्व्यवहार भी करे, वो लोगों को छोड़ता नहीं कंपनी। वो कौन सा डिपार्टमेंट मालूम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये मार्केटिंग वाले होते हैं, भले वो लेट आए कुछ भी करे लेकिन कंपनी छोड़ता नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कंपनी चलेगा कैसे। तो वैसे ही प्रचारक होते हैं वो भगवान के मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं और उनके बिना तो भगवान का ख्याति जगत में कैसे एस्टैब्लिश होगा। इससे कई इधर उधर दोष भी है तो भगवान उसको अपना लेते, ठीक है उनके साथ में रहेंगे, स्वभाव है भगवान का। इसलिए बड़ा ये ध्यान को ध्यान, इसलिए वपु के साथ भगवान उस भक्त का सेवा करते हैं, इस हार जाते हैं भक्त के सामने, चाहे कुछ भी हो ठीक है तुम्हारे साथ में रहूंगा, वपु के साथ भगवान सेवा करते हैं भक्त का। दूसरा तनु वांग, वांग मतलब वाणी के द्वारा, और उस भक्त का गुणगान करते हैं भगवान जो हमेशा उनकी सेवा में लगे हुए, उनका श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। तो भक्ति के द्वारा भक्त जो है स्वयं भगवान उस भक्त का गुणगान करते हैं। अस्तित्व में हम देखे कल या शाम के चर्चा में परसों किस प्रकार भगवान स्वयं बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। इसके द्वारा भगवान सारा जगत को कह रहे हैं, मैं अपना भक्तों का गुणगान करता हूँ। जिस प्रकार जितना लालसा के साथ भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, उसी लालसा के साथ भगवान भी भक्त का गुणगान करना चाहते हैं। इवन द लॉर्ड वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटी, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप देखिए, भगवद गीता में भगवान ने प्रवचन दिया और अर्जुन को समझा दिया और समझ गए, लेकिन पूरा महाभारत युद्ध होने के बाद वही भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए प्रयास किया, युधिष्ठिर महाराज समझे नहीं। ऐसा क्यों क्यों नहीं समझ रहे थे? क्योंकि ऐसा वर्णन किया गया है, बहिरंगिक तरीके से बाहर से भगवान भीष्म पितामह को समझा रहे। जो अवस्था युद्ध के पहले अर्जुन का था, युद्ध के बाद युधिष्ठिर का वैसे अवस्था था। वो भी रोने लगे, अरे मैंने क्यों कर दिया, युद्ध किया, इतने लोग मर गए, अभी मैं चले जाऊंगा, मैंने इतना क्यों पाप को भोग, पाप लेके बैठा हूँ, पाप का राजा थोड़ी ना बनूंगा, ऐसा सब उन्होंने चर्चा बोलने लगे। तो भगवान को समझाने के लिए प्रयास किया, समझे नहीं। तो क्यों नहीं समझ रहे थे? बाहर से कृष्ण समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के अंदर परमात्मा के रूप में बैठ के कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहे थे, समझो मत इसको, डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान भीष्म पितामह का ख्याति बढ़ाना चाहते थे। उनको मालूम है भीष्म पितामह इतना महान भक्त है, तो वो मैं भीष्म पितामह को मौका दूंगा ताकि वो युधिष्ठिर को समझाए। जिस व्यक्ति को मैं समझा नहीं पाया तो वो भीष्म पितामह समझाएंगे। तो इस बात के द्वारा पता लगता है कि भगवान भक्तों का ही ख्याति बढ़ाना चाहते। तो वैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम निमित्त मात्रम कारण भवे सब विसाचिन, निमित्त मात्र बनो और युद्ध करो, सबको मारो, ये सब पहले से ही मारे गए पूर्व में, वह निहितात पूर्व हैं, पहले से उनको मार दिया हो, केवल तुम यहाँ क्या करो, यशो वल्लभस्वा, यश प्राप्त करो बस। कभी कभी भक्त लोग प्राप्त नहीं भी करना चाहते यश को, भगवान बोलते यशो वल्लभस्व, तुम प्राप्त करो यश को, मैं अपना यश तुमको देना चाहता हूँ। ये भगवान का स्वभाव है, ही ऑलवेज ग्लोरीफाइज द डिवोटीज, कार्य के द्वारा किसी प्रकार के द्वारा भगवान भक्तों का हमेशा गुणगान करते हैं, ग्लोरीफाइज देम, ये स्वभाव है। जिस प्रकार भक्तों का स्वभाव है भगवान का गुणगान करना, वैसे भगवान का भी कृष्ण का भी यही स्वभाव है कि भक्तों का गुणगान करते हैं। और आगे तनुवांग मनोभेर, मन में हमेशा अपने मन के अंतर्गत, मन ही मन में हम भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं, ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ डिवोटीज। जैसे भगवद गीता में योगक्षेम वहामि अहम, भगवान कहते हैं कि मैं उनका योग और क्षेम वहाँ ही कहते हैं। तो वहाँ ही शब्द के द्वारा एक आचार्य वर्णन करते हैं, भगवान केवल जब भक्त तकलीफ में होते तभी नहीं सोचते, वो हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे माँ बच्चे के बारे में हमेशा सोचती है, ऐसा नहीं कि बच्चा बीमार है तभी सोचता है, तभी उनके बारे में ख्याल रखती है, उनके बारे में सोचती है, नहीं, वो उनके बारे में विचार स्मरण 24 घंटा रहता है, सपने में भी रहता है। उसी प्रकार भगवान जो है भक्तों के बारे में सोचते, इसलिए भगवान को क्या कहा गया इधर, अजितोपि, वो अजित होने पर भी जितहा, भक्त लोग उनके ऊपर जीत जाते हैं। किस प्रकार कहा गया है भागवत के शुरुआत में ही, जो व्यक्ति इस भागवत को श्रवण करता है वो क्या करता है, भगवान जो तीनों लोकों से परे है, जिनको बांध नहीं सकते कोई, उसको बांध के अपने हृदय में रख सकता है। कैसे कहा गया है भागवत में कि हृदय अवरुद्यते तत्र शुश्रूष भी तत्क्षणात्, हृदय अवरुद्यते अपने हृदय में अवरुद्यते शुश्रूष भी, शुश्रूष में श्रवण करने के द्वारा, भगवत कथा की भगवान का नाम कीर्तन करने से, उनकी कथा का श्रवण करने से भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को अपने हृदय में बांध के रख लेते हैं, दे कैन बाइंड हिम। जैसे यशोदा मैंने कृष्ण को बांध के रखी भक्ति के रज्जु के द्वारा, इसी प्रकार जो अजित भगवान है उनके ऊपर जीत जीत जाएंगे। ये भाव से श्रीपाद सनातन गोस्वाईपाद ये तीन व्याख्या करते हैं, तनु वांग मनोभीर। पहला व्याख्या, तनु वांग मनोभीर जब अप्लाई होता है नमन्ति ये शब्द के ऊपर, जब ये तनु वांग मनोभीर अप्लाई होता है अजितः ये शब्द के साथ, जब तनु वांग मनोभीर ये अप्लाई होता है जितः ये शब्द के साथ। तो श्रील विश्वनाथ ठाकुर तनु वांग मनोभीर ये शब्द के ऊपर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भक्त लोग पूर्ण तरीके से कर्मणा मनसा वाचा, क्योंकि तीन ही कार्य है, शरीर के द्वारा कार्य, वाणी के द्वारा बोलना और मन के द्वारा सोचना, ये तीनों के द्वारा पूर्ण तरीके से शरणागत होकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो इधर एक सुंदर बात है कि ये सन्मुखरितम, ये सन्मुखरितम क्या है, भले ही श्रुतियों में भागवत में है या अन्य वेदों में पुराणों में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, ये वर्णन होने पर श्रुतिगताम श्रुति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, फिर भी सन्मुखरितम संतों के मुख से भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ये क्यों श्रवण करना चाहिए? प्रभुपाद जी भागवत के पहला स्कंद में पहले अध्याय में भी एक जगह लिखते हैं, रीडिंग इज नॉट एनफ, वन शुड हियर। तो भगवत कथा का शास्त्रों से पढ़ने में और संतों की मुख से सुनने में क्या अंतर है? वैसे तो दोनों एब्सोल्यूट है, दोनों भक्ति का अंग है, लेकिन फिर भी संतों के मुख से श्रवण करने से क्या होता है कि हमारा साक्षात्कार होता है। पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, सुनने से साक्षात्कार होता है, क्योंकि श्रवण करने के द्वारा क्या होगा, जो संत है जिनके मुख से हम श्रवण कर रहे हैं उनकी चेतना हमारे अंदर प्रवेश होता है। तो वैसे हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन चेतना का उन्नति शुद्धिकरण और साक्षात्कार हो नहीं पाता है। ये भागवत में एक श्लोक वर्णन है कि जब संत जन भगवत कथा का वर्णन करते हैं वही शास्त्र से, शास्त्र में पूरा वर्णन है जैसे भागवत में उनकी कथाओं का वर्णन है, वही भागवत को एक भक्त भागवत के मुख से श्रवण करने से क्या होता है, भक्त भागवत उनको वर्णन करते हैं तो क्या होगा, भगवान की जो चरण कमलों में जो सुगंध है वो सुगंध के द्वारा लेपित होके वो कथा प्रकट होती है जिसके द्वारा वो और आस्वादन कर सकते हैं। तो भागवत तो स्वयं रूप में आस्वादनीय है, लेकिन फिर भी उसको संतों के मुख से सन्मुखरितम, तब तुरंत वो भवदीय हो जाता है। तो कभी कभी ये भी अनुभव किया गया है कि हम कोई भगवद गीता खास करके, भागवत तो ठीक है कभी कभी पढ़ने से तो एकदम पूरा आनंद का अनुभूति होता है, लेकिन फिर भी जब भगवद गीता पढ़ते हैं कि ये स्वयं खुद भी अनुभव किया हूँ और साथ साथ भरे भक्तों का अनुभव है, वैसे श्लोकों को पढ़ेंगे तो उसका समझ में आता है क्या बोल रहे भगवान, भाग भाग एक ही चीज़ बता रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है, रुचि नहीं लगता है। ये भगवद गीता के साथ पेरी मच अप्लीकेबल है, लेकिन वही एक भक्त के मुख से उस श्लोक का व्याख्या सुनेंगे तुरंत आस्वादनीय हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ऐसा नहीं क्या भागवत पहले नहीं था, सुखदेव गोस्वामी बोलने से पहले भागवत नहीं था, वो था, भागवत तो नित्य है, नित्य होने के बाद भी ये भागवत हमको क्यों रुचिकर है, क्योंकि सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। वैसे वैदिक वाङ्मय शास्त्र में ये वृक्ष के बराबर तुलना किया, कल्प वृक्ष निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये गलितम फलम है श्रीमद् भागवतम। लेकिन एक वृक्ष है, अगर उसके वृक्ष के सामने खड़ा किया जाए आपको, कौन सा फल को कैसे खाना चाहिए मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई तोता कोई फल को खा रहा है इसका मतलब निश्चित रूप में उसके अंदर मिठास है। और कभी और भी कहा गया है केवल तोता का चोंच का स्पर्श होने से वो फल का मिठास और बढ़ जाता है। केवल यही नहीं कि फल जो है वो मीठा फल को ही तोता स्पर्श करता है, लेकिन वो तोता का स्पर्श करने के बाद वो मीठा फल का और मिठास बढ़ जाता है। इसी प्रकार जैसे परंपरा आगे बढ़ती रहती है उतना कृष्ण कथा का और आस्वादन और बढ़ता जाता है। ये है सन्मुखरितम, ये शब्द का बात। भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ता मतलब क्या है, भक्त जैसे वो कृष्ण कथा में बैठता है या कृष्ण कथा का श्रवण करना शुरू करता है उसी समय वो भवदीय। ऐसा नहीं कि ये सुनने से उनको मुक्ति प्राप्त होता है। एक आचार्य वर्णन करते हैं कि श्रवण करने जैसे बैठा उसी समय वो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं कि बाद में मुक्त हो रहा है, मुक्ति बाद की बात नहीं है, जैसे हम श्रवण करने बैठते तुरंत तीन तापों से मुक्त हो जाते। उसका प्रमाण क्या है, भागवती प्रमाण है कि क्या कहा गया है भागवत में, तत्क्षणात्। तत्क्षणात् मतलब तुरंत क्या होता है, तापत्रयोन्मूलनम। ये तापत्रयोन्मूलनम तुरंत हो जाता है, उनको ज़्यादा लंबा समय इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। नीता उत्तम श्लोक वार्तया, जैसे भागवत में वर्णन हुआ है, आयुर्हरति वही पुंसान उद्यन्नस्थम चैन्नसो तस्यार्थ्य क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। जैसे उत्तम श्लोक वार्तया भगवान की जो कथा है उसमें श्रवण करने बैठता है तो क्या होगा, तो उनका जो काल का जो प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता है। जो भौतिकवादी है उसका ऊपर काल का प्रभाव रहता है। उद्यन्नस्तम च नस्व तस्यार्थ आयुर्हरति वै पुंसान, आयु का हरना शुरू कर देता है सूर्य। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उनका आयु निष्ठ जा रहा है। लेकिन उस समय कोई व्यक्ति कृष्ण कथा में बैठा है, सूर्य को स्पर्श नहीं करता। सूर्य एक काल का नियंता देव, नियंत्रक कर, नियंत्रण करने वाला देव है। तो काल का अगर प्रभाव नहीं है तो निश्चित रूप में वो मुक्त है, समझ लेना चाहिए। तो जैसे हम कृष्ण कथा में बैठे, कृष्ण कथा का श्रवण किए, तो उसी समय हम मुक्त हुए। ये भवदीय वार्ताम है, वार्ताम। और उसके लिए भक्त को क्या करना होगा? तो तीर्थ स्थान जाना होगा। तो श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि भक्त लोग तीर्थ स्थान नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जहाँ कृष्ण कथा है वही तीर्थ स्थान है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए स्थाने स्थितम कहा गया है। तो कुछ लोगों का ऐसा मन रहता है कि आजकल हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कुछ दिन पहले हम बद्रीनाथ वगैरह गए थे, उधर रास्ते में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा आश्चर्यचकित, बड़ा सा जहाज का फोटो है और उधर भागवत कथा लिखा है। मतलब जहाज का फोटो और भागवत कथा के क्या संबंध क्या है? मैं सर कोई और मेरी इंजीनियर है क्या कोई? बाद में मैंने गौर से देखा कि उसको कम, एक एक व्यक्ति को कुछ 2-3 लाख रुपए देना होगा, उसको पूरा दुनिया में जहाज में घुमाएंगे 30 दिन या 40 दिन, और उधर कोई संत है उनका फोटो था, कोई है वो भागवत कथा कहेंगे, जहाज में करेंगे। लेकिन उनको ये श्लोक पढ़ाना चाहिए, स्थान है स्थितम श्रुति कथा अंतनु वांग मना भेर। उनको हमको जहाज में जाके क्या? तो मैंने इसे पूछा कैसा क्यों है, जहाज तो हिलता रहता है क्या, उसको स्पेशल आनंद आता है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये दोनों का मिक्सचर है। क्या है? भौतिकता आनंद का, भौतिक आनंद का और आध्यात्मिक आनंद का मिक्सचर है। बोला ये मिक्सचर कभी नहीं होता है, जहर और दूध का कभी मिक्सचर नहीं होता है, तो जहर ही बोला जाता है उसको, भागवत नहीं बोला जाता है। क्योंकि ये तो स्पष्ट है, क्योंकि भागवत के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें क्या लिखा गया, स्थाने स्थितम, वो जहाँ हो उधर बैठ के अब सुनो। आपका वर्ण या आश्रम को परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस जगह बैठे हो, जिस मंदिर में स्थित हो, उधर ही बैठने की ज़रूरत है। तो क्यों? क्योंकि जहाँ कृष्ण कथा का प्रभाव हो रहा है वही तीर्थ है, क्योंकि उधर भगवान है, उधर भक्त है और सब कुछ उधर ही। लेकिन तीर्थ में जाके नाना हंगामा करके नहा के आ गया तो हम लोग केवल बधा बन जाते। तो पहले वर्णन किया हुआ है कि ये तीर्थ शरीर न करिचित जनेश विघ्नेश सैव गोखरा, वो घोखरा वो गधा बन जाता है। तो इसलिए ये स्थाने स्थितम अति महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्तों को ये ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं कौन सा स्थान को ग्रहण करूँ, ब्रह्मचारी बनूँ, गृहस्थ बनूँ, या गृहस्थ बनने के बाद भी छोड़ छाड़ दूँ, क्या है? ये स्थान को निर्णय करने में बहुत तकलीफ होता है भक्तों को। अस्तित्व में इसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिस स्थान में आप आराम से कृष्ण कथा का आस्वादन कर सकते हैं वही बेस्ट स्थान है आपके लिए। तो मान लीजिए आपका गृहस्थ होते हुए आप भगवान का श्रवण करने में आपका सुविधा मिल रहा है, उसको कम्फर्टेबल है, तो वो बेस्ट स्थान है। अगर आपको ब्रह्मचारी के रूप में आप श्रवण करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त स्थान है तो ब्रह्मचारी का स्थान अच्छा है। तो आपको ये बेस्ट जगह लगता है उधर बैठ के श्रवण करो, जहाँ अच्छा है उधर बैठ के श्रवण करो। तो श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि भक्त लोग निश्चित रूप में जानते हैं कि भगवत कथा का जहाँ चर्चा हो रहा है वही तीर्थ है, उनको अलग कोई तीर्थ नहीं है और कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको स्थाने स्थितम कहा गया है। श्रुति कथाम तनुवांग मनोभिर, ये प्रायसो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया ये बताने के लिए, ऑलमोस्ट अगर बोल देंगे कि सब कुछ हो जाता है, कि ऑलमोस्ट मतलब हो गया 100% है, तो ये प्रायसो शब्द इस्तेमाल किया। जितह तेईस त्रैलोक्यम, तीनों लोकों में जिनको जीत नहीं सकते वैसे भगवान को ये भक्त लोग जीत के अपने पास रखते हैं। ये भक्ति का महिमा को वर्णन करने वाला श्लोक है। अगर अज्ञानी व्यक्ति भी, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो फिर भी कोई तकलीफ नहीं, केवल स्थाने स्थितम श्रुतिगताम भगवान मनोवीर सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, अगर वो व्यक्ति करता है वो निश्चित रूप में भगवान को भी जीत लेता है, ऐसा ये श्लोक के वर्णन हुआ है। अभी अगले श्लोक में ब्रह्मा जी नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं। नेगेटिव मतलब एग्जाम्पल मतलब कि उसका अपोजिट, जो व्यक्ति इस भक्ति को त्याग करता है। अभी पहले क्या हुआ, जो ज्ञान को त्याग किया उसका वर्णन है, ज्ञान को त्याग करके भक्ति करना। इधर ऐसे लोगों का वर्णन है जो भक्ति को त्याग करके अन्य विधियों को स्वीकार करते हैं, उनका क्या परिणाम होगा उसका वर्णन है अगले श्लोक में, उसको मेरे बाद उच्चारण कीजिएगा। जस्ट ಶ್ರೇಯ ಶ್ರುತಿಂ ಭಕ್ತಿ ಮುದಸ್ಯತೆ ವಿಭೋ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತಿ ಯೇ ಕೇವಲ ಬೋಧ ಲಬ್ಧಯೇ ತೇಷಾಮಸೋ ಕ್ಲೇಶ ಏವ ಶಿಷ್ಯತೆ ನಾನ್ಯದ್ಯಥಾ ಸ್ಥೂಲ ತುಷಾವಘಾತಿನಾಂ. एक पाली काम, पांच मिनट का व्याख्या है उसका. तो इसके अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे लोग भक्तिम उदस्य, भक्तिम उदस्य, उदस्य मतलब क्या है, जो त्याग करते हैं. किन को त्याग करते हैं, भक्ति को त्याग करते हैं. पहला लाइन में जो श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य, भक्ति को उदस्य मतलब भक्ति को त्याग करते हैं. पहले श्लोक में क्या है, यानी इसके पहले वाला श्लोक में ज्ञाने प्रयास उदपास्य, जो ज्ञान को त्याग किया. अभी इधर क्या कहे, जो लोग क्या त्याग कर रहे हैं, भक्ति को त्याग कर रहे हैं. जो किस प्रकार का भक्ति है वो, इनका जो एडजेक्टिव क्या है, श्रेय श्रुतिम, जो श्रेय है, सर्वोच्च श्रेय को प्रदान करने वाला है, सबसे सर्वोच्च चीज है. वो सर्वोच्च चीज क्या है, जो अजित भगवान है उनको भी उनको भी जीतने वाला ऐसा भक्ति, ऐसा श्रेय को प्रदान करने वाला जो भक्ति है उसको जो त्याग करता है, उनका क्या बोले, उनका क्या स्थिति है. उदस्य ते विभो, हे भगवान आप देखो क्या होगा उनका. क्लिश्यंती, केवल क्लिश्यंती, केवल क्लेश ही भोगते हैं, उनको केवल दुख ही दुख है. चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो योग हो, कुछ भी हो, कुछ भी प्रकार का स्थिति हो, जो भक्ति को त्याग किया, ज्ञान कर्म योग ये तीनों केवल क्लेश को प्रदान करने वाला, केवल दुख को प्रदान करने वाला, केवल बोध लाभ है. और उनको ज्ञान की लालसा के लिए या कर्म की लालसा के लिए, खास करके इस श्लोक में ज्ञान की लालसा के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति को त्याग करता है उनको क्या होगा, केवल दुख ही दुख प्राप्त होगा और कुछ प्राप्त नहीं होगा. तेषामसो क्या होगा, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा. जिस प्रकार ना ज्ञान प्राप्त होगा ना कुछ प्राप्त होगा. कैसे, उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर उदाहरण. स्थूल तुष अवघातिनाम, आखिरी शब्द है इस श्लोक का. स्थूल तुष मतलब जो ये होता है, धान होता है, जो चावल का धान होता है उसके अंदर से चावल से निकाल दिए, चावल निकाल दिया, निकालने के बाद उसको हस्क बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भूसा, भूसा कुछ भूसा बोलते हैं ना, भूसा है. और दूर से देखेंगे ऐसा लगता है कि ये अभी धान है, लेकिन धान नहीं है, भूसा है. तो अंधा व्यक्ति है, वो क्या करता होगा, वो सोचा कि भूसा को सोचता होगा धान है, बहुत चावल निकलेगा करके उसको कूट रहा है, लेकिन वो चावल कभी नहीं निकलेगा. उसका फल क्या होगा, केवल उनका हाथ पैर का दर्द मात्र होगा और कुछ नहीं, केवल क्लेश ही उसका वो होगा. तो इधर ऐसा कहा गया है कि तेषाम असो क्लेश एव, क्लेश एव, दुख ही प्राप्त होगा. इसका मतलब ये है कि उनको जो चीज़ को प्राप्त करने के लिए भक्ति त्याग कर रहे हैं, ज्ञान हो ये कर्म हो या योग हो, वो भी प्राप्त नहीं होगा. यानी भक्ति के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा. तो ये बात को कहा गया है, इसलिए भागवत में कहा गया है वासुदेव भगवती भक्ति को प्रयुक्त है, जनेत्यास वैराग्यम ज्ञानंच हेतु, ज्ञान और वैराग्य हर चीज भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है. अगर व्यक्ति को ज्ञान भी प्राप्त करना है तो भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल. तो इसलिए जो भक्ति है श्रेय श्रुतिम, श्रेयकर भक्ति है, उसको जो त्याग किया है उनको केवल क्या प्राप्त होगा, केवल क्लेश ही प्राप्त होगा. ज्ञान के पीछे पड़ने की वजह से ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा, ही डजंट गेट एनीथिंग, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होगा. जिस प्रकार ये शास्त्रों में या भागवत के पहले स्कंद में वर्णन हुआ है कि जो व्यक्ति अपना धर्म स्वनुतिष्ठ पुंसान विश्वक्षेण कतासुह न उत्पादयेत त्रितम श्रम एव हि केवलम, न उत्पादयेत, अगर वो उत्पादन नहीं करता क्या उत्पन्न होता नहीं है. अगर विश्वक्षेण कथासु यह रति, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए रति आसक्ति जब तक उत्पन्न नहीं होता है तब तक वो जो भी कार्य करता है वो केवल श्रम ये वही, उससे ना भक्ति प्राप्त होगा ना जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है भौतिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा। कर्मी को भौतिक सुख, योगी को योग सिद्धि, ज्ञान को मुक्ति, ज्ञानी को मुक्ति, ये तीनों भी उन लोगों को प्राप्त नहीं होगा जब तक वो भक्ति का शरण नहीं लेते। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्मी लोग केवल बहुत मेहनत करते हैं कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्त लोग बिना मेहनत का जो चीज़ कर्मी लोग मेहनत करके प्राप्त हो नहीं कर पाते वो भक्त लोग प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी लोग इतना मेहनत करके तपस्या करके पूरा शास्त्रों को उपनिषदों को इधर उधर करके उनका कुछ प्राप्त नहीं होता है, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भक्त लोग केवल भजन करने मात्र से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये देखा गया, स्पष्ट देखा गया है। ये हमारी संस्था हमारा इस्कॉन जो है इसके लिए ठोस सबूत है। कैसे सबूत है? आप देखिए कि हमारे मंदिर में खासकर जब ज्वाइन करते हैं ब्रह्मचारी के रूप में जब आते हैं, या अधिकांश लोग जैसे ऐसे सरल तरीके से आके ज्वाइन कर लेते हैं, वो बहुत गरीब परिवार से होंगे या उनका भौतिक जीवन में उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अनपढ़ है, कोई हासिलित नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे वो मंदिर में आते हैं, भजन करना शुरू करते, धीरे धीरे से वो भक्ति करते करते वो कहीं जाना उनको गाड़ी मिल जाता है, कहीं उनको जो सपने में भी सोचा नहीं होगा कोई ऐसा गाड़ी में चलेगा, जा सकता है, लेकिन वो गाड़ी में जाता है तो क्या सपने में भी सोच नहीं सकता होगा वो, अगर मान लीजिए वो अगर भौतिक जीवन में होता तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो इस प्रकार का बड़ा महल में रह सकता है। ये भी महल तो है, भगवान का तो महल है, लेकिन हम लोग बैठे तो है कि नहीं, वी आर सिटिंग देयर। लेकिन बताइए कितने लोगों के पास इतना मेहनत करने के बाद भी इस प्रकार का बड़ा महल में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, यू कैन नॉट डू दैट। तो भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर भक्ति को छोड़ने से जो चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो वो भी प्राप्त नहीं होगा, केवल क्लेश ही प्राप्त होगा। भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए डिवोशन इज बेटर। अगर ये श्रेय शब्द का व्याख्या भौतिक दृष्टिकोण से भी लिया जाए, इवन इफ यू टेक द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, बेटर बिकम ए डिवोटी, इसमें कोई घाटा नहीं है। अब भौतिकवादियों के लिए भक्त बनना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहते उसको भी भक्त बनना चाहिए। योग सिद्धियां, तो योग सिद्धियां तो आप कहो मत, तो भक्तों के पास योग सिद्धि रहता है। तो योग के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा लोग क्या करना चाहते, दूसरों को वश में करना चाहते हैं कि नहीं, दे वॉन्ट टू कीप पीपल अंडर कंट्रोल। लेकिन ऐसा जादू है इस भक्ति में, जो भी भक्त बनता है खाली वेशभूषा धारण करने मात्र से लोग आके उनको प्रणाम करते हैं, खाली वेशभूषा। अभी नए नए भक्त बना है, बस खाली वेश ही धारण किया, वो कोई खाली माला में ऐसा झोली में हाथ डाला है, बस वो गया बाहर हाउस प्रोग्राम में, सब लोग प्रणाम करेंगे उसको, चाहे वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो प्रणाम करेंगे, है कि नहीं? है कि ये इससे बड़ा सिद्धि क्या है बताओ। तो देखा जाए कि ज्ञान, कर्म और योग, इन तीनों को तुच्छ बना दिया ब्रह्मा जी ने इन दो श्लोकों में। यस, इन दीज टू श्लोकस एक ही चीज़ को निरूपण किया, आपको केवल भक्ति करना चाहिए, वो भी श्रवण करना है, और तनु वांग मनोवीर मनसा कर्मणा वाचा, तीनों तरीके से सन्मुखरितम, संतों की मुख से उत्पन्न वाणी का सेवा करना है, इसके द्वारा तुरंत मुक्ति प्राप्त होता है, उसको उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आगे ऐसे तो मेरा आज का सिलेबस था 3, 4, 5, 6, 7 तीनों श्लोक भी करना था लेकिन हो नहीं पाया, फिर भी ठीक है, वो कल कर लेंगे। 5, 6 और 7 तीन श्लोकों में आगे इसी पॉइंट को और एलोबोरेट किया गया है, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा, ये 5 श्लोकों में ब्रह्मा जी भक्ति का श्रेष्ठता को वो स्थापित करते हैं। अन्य मार्ग जो है उसका कोई फायदा नहीं, केवल क्लेश ही है, उसका वर्णन करते हैं, ये प्रयास भी केवल विफल है, उनको कोई करने की ज़रूरत नहीं, इस बात को स्थापित करते हैं। और 8वां श्लोक है, वो मैंने जो 3 श्लोक कहा था जिसको याद कर लेना चाहिए, उस श्रृंखला में 2रा श्लोक है। ये श्लोक में सारा हमारा अभिधेय, अभिधेय मतलब प्रोसेस, भक्ति श्रेष्ठ है लेकिन कैसे करें, उसको एक श्लोक में ब्रह्मा जी ने कह दिया कैसे करना चाहिए भक्ति को। इतना हद तक कि वो श्लोक, ये अध्याय का 8वां श्लोक जो तत्तेन कंपास समीक्षमाणों से शुरू होता है, ये श्लोक अगर याद करके अपने जीवन में उतार लिया, उनको कोई और श्लोक को स्वीकार करने की जरूरत नहीं, इतना गुह्य है श्लोक, और कुछ करने के लिए इसके अंदर खाली 3 पॉइंट मात्र है, उसको हम कल हो सके चर्चा करेंगे, नहीं तो परसों चर्चा करेंगे। तो ये इन श्लोकों का ये है. कोई प्रश्न वगैरह तो पूछिए. नहीं क्वेश्चंस. यस, एक क्वेश्चन लेंगे बस. क्लास ऐसे पूछिए. हाँ हाँ अच्छा प्रश्न. प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना अच्छा है, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना चाहिए? तो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए. बुक्स जब पढ़ेंगे तो वो भक्तों के संग में बैठ के पढ़ना चाहिए. अकेले बैठ के पढ़ेंगे तो रस प्राप्त नहीं होता है. अगर अकेले पढ़ेंगे तो भी स्वाध्याय कर सकते हैं. वो स्वाध्याय करने के बाद भक्तों के संग में बैठ के उसको मंथन करना चाहिए. नहीं तो केवल पढ़ते पढ़ते जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन होता जाएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन रियलाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल है. अगर एक व्यक्ति अति सत्वगुण में है तो पढ़ते पढ़ते वो साक्षात्कार प्राप्त जरूर कर सकता है. लेकिन ये बहुत पावरफुल लाइन है प्रभुपाद जी का, जिसको सूक्ष्म बुद्धि से समझना चाहिए. प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ने का मना नहीं किया गया है, लेकिन सूक्ष्मता तरीके से समझना चाहिए. भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के छठे श्लोक लगता है, छठा या सातवां श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं. जस्ट रीडिंग इज नॉट एनफ, वन शुड हियर एंड ग्लोरीफाई द पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. ऐसा एक लाइन लिखते हैं, ही राइट्स इट. आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसके ऊपर आप मंथन कीजिएगा. इससे मंथन करने के द्वारा ये निष्कर्ष पाएंगे कि कृष्ण कथा का बैठ के सताम प्रसंगात मम वीर ये संविदो, संतों में बैठ के सुनना चाहिए. तो पढ़ने के बाद भी उसको सुनना और सुनाना करना चाहिए. मैं इस श्लोक के ऊपर एक बार लेक्चर देते मैंने कहा, ये पढ़ना जो है वो जैसे गाय, गाय घास खाती है कि नहीं, ये घास खाने के बराबर है. वो खाने के बाद क्या करती है, फिर वापस उसको निकालती है, फिर से उसको खाती है कि नहीं. तो पढ़ना जो है वो इसके बराबर है, गाय खाने पहला खाने के बराबर है. उसके बाद जो भक्तों के संग में बैठ के उनको श्रवण करना, ये जो है वो दूसरा खाने के बराबर है. तो वो मेन है, वो पहला जो है वो इतना मेन नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी वो करना चाहिए. वन शुड डू, ब्रह्मचारियों को खास करके करना चाहिए, ब्रह्मचारी शुड डू, क्योंकि उनको उनको सुनाना है लोगों को और ये लोगों को इस भक्ति में प्रवृत्त करना है, इसलिए दे हैव टू डू दैट. इसमें कोई पढ़ने के विरोध में नहीं है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए. वी शुड नॉट गो टू दैट एक्सट्रीम, लेकिन श्रवण का महत्व जानना चाहिए उससे, ये बात है. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय.